Happy Diwali. Om Shanti. Enhancing the emotional quotient of your child. As a doctor, हम सबको बहुत पता है कि हमारे emotions का हमारी body and mind पे क्या effect पड़ता है. And today, all of us are actually experiencing that in the present day situation, जितना chaos हमारे बाहर है, पर अगर mind disturb नहीं हो रहा, if we actually have the right way of thinking, हम हर चैलेंज को क्रॉस कर सकते हैं और इसी से ही हम अपना इमोशनल क्वेश्चन इंक्रीज करते जा रहे हैं. बट व्हाट इज द टाइम कि आप अपने बच्चे का भी इमोशनल क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं. व्हेन डू वी स्टार्ट नाउ इफ वी एक्चुअली टॉक वी विल से इट बिगिंस एट बर्थ. बट एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट जो साइंटिफिकली भी हमें पता है, स्पिरिचुअली तो हमें आइडिया था ही उसका, क्योंकि हमारे एंशियंट कल्चर ने हमें बहुत क्लियरली बताया है कि गर्भ संस्कार बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है जो हर एक्सपेक्टिंग पेरेंट को ब्यूटिफुली प्रैक्टिस करनी चाहिए. बट साइंटिफिकली ऑल्सो ये हमें पता कर गया है कि वी शुड स्टार्ट बिफोर यू इवन एक्चुअली हैव द बेबी. क्योंकि जिस तरह से आपका मन बार बार राइट इमोशंस को क्रिएट करेगा, आपकी बॉडी भी बहुत हेल्दी होगी. Health in terms of physical health, mental health, social health, relational health, then spiritual health. तो ये सब चीजों की जब हमें शुरू से नॉलेज है तो हम ये बहुत क्लियरली समझ सकते हैं कि हमारा डिवेलपिंग बेबी ऑल्सो विद इन द वोम, उसकी फिजिकल हेल्थ पे हम सब बहुत ध्यान देते ही हैं, बट एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि उसकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ भी तब से ही क्रिएट हो रही है जब से वो आपके वूम में आता है. दिस इज समथिंग जो हमें बहुत इम्पोर्टेंटली पता होना चाहिए और हमें अपने पेरेंट्स और पेशेंट से शेयर भी करना है. क्योंकि फिजिकली अगर हम देखें, अगर आज हमारे बेबी का वेट में कुछ इश्यू है, अगर हमारे बेबी की आसपास जो वॉटर है उसको जो ब्लड फ्लो मिल रहा है उसमें कुछ ऊपर नीचे भी है, बाद में जब वो बाहर आएगा ये सब चीजें हम टैकल कर सकते हैं. We can actually take care and जो mind और emotional mind है वो जो है अगर उसमें problem आ जाए, I am not talking about brain, I am talking about mind, उसके अंदर जो changes आते हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है. क्योंकि वो emotional pain कभी कभी रह जाती है और scientifically बहुत सारे neurobiologist हैं, neonatologist हैं, birth psychologist हैं, psychotherapist हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, हम डॉक्टर्स हैं, ऑब्स्टेट्रिशियंस, पीडियाट्रिशियंस, जिन्होंने खूब रिसर्च करी है और उन्होंने ये क्लियरली बताया है कि मदर की थॉट्स का इम्पैक्ट बहुत डीप होता है. बट सिर्फ मदर ही नहीं है, बिकॉज फैमिली पूरी इन्वॉल्व होती है बेबी को क्रिएट करने में. भले मदर इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, बट जितनी भी भावनाएं होती हैं उस फैमिली में पेरेंट्स की, वो सब एक बहुत ही डीप इम्पैक्ट छोड़ती है उस डेवलपिंग बेबी पे, उसके माइंड पे भी और उसकी बॉडी पर भी. तो कितना ना ध्यान रखना चाहिए हमें. और अगर हम इन सब चीजों का ध्यान रखते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा भी इमोशनल क्वेश्चन बढ़ता जाएगा और हमारे डेवलपिंग बेबी का भी इमोशनल क्वेश्चन बढ़ता जाएगा. साइंटिफिक फैक्ट हम सबको पता है कि एक सिंगल सेल से 250 डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स बनते हैं. अब आप सोचिए कि कितनी लेवल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, बायोकेमिकल कैस्केड्स, कितनी सारी सेल माइग्रेशंस, सेल प्रोलिफरेशंस, कितने साइंटिफिक टर्म्स हम यूज करें आज वो भी कम हो जाएंगे इन बायोलॉजिकल पाथवेज के लिए. तो कितना एक सेल जब इतने ट्रिलियन सेल्स बना रहा है तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है वो, उसके बारे में हम उसको मिरेकल ऑफ लाइफ ही कह सकते हैं. बट इस समय पे जब इतने ज्यादा अंदर कॉम्प्लेक्स चीजें चल रही हैं, उस समय पे कितनी रिंसिंग हो रही है एक एक हार्मोन जो मदर और फैमिली सिक्रीट कर रहे हैं उससे, क्योंकि वो बेबी के हर सेल को रिंस करता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट साइंटिफिक फैक्ट्स हैं एंड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने बहुत बहुत क्लियरली बहुत रिसर्च करी है कि माता पिता की भावनाओं का सीधा असर गर्भ में पलते हुए उस बच्चे पर पड़ता है, क्योंकि वो कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिससे उस बच्चे की इमोशनल रेगुलेशन, उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रेन, उसकी केमिस्ट्री ऑफ ब्रेन, वो सब भी ऑल्टर हो सकती है। और यही कहते हैं, इसी को हम साइंटिफिक टर्म्स में कहते हैं फीटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब चीजें हमें पता भी हैं, बट जब हम डिटेल में उसको रीजन से समझते हैं तो हम बहुत मोटिवेट भी होते हैं और इंस्पायर भी होते हैं कि आज हमें वो सब चीजें करनी है, अपनी लाइफ को होलिस्टिकली भी लीड करना है, साइंटिफिकली भी अपने आप को स्ट्रेंथन करना है एंड स्पिरिचुअली भी अपने आप को इवॉल्व करना है। क्योंकि साइंटिफिकली जब एविडेंस मिल जाती है तो बाकी सब चीजें करनी बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि उससे वी फील कि नाउ एवरीथिंग इज परफेक्ट, नाउ वी नो, बिकॉज दैट्स द वे आवर डॉक्टर माइंड वर्क्स। हर टाइम पे हम कोई ना कोई चीज की एविडेंस ढूंढते हैं, बट एविडेंस सिर्फ वही नहीं है जो हमारे को फिगर्स में परसेंटेजेस में मिलती है। अगर हमारे आज एक पेशेंट का भी अनुभव ऐसा है कि उसने जो हमने उसको जो नॉलेज दी, अगर उसने उसको फील किया और उसका इफेक्ट उसको अपने बेबी के पर मिला, बट बाकी चाहे 10 को नहीं मिला, वो एक की भी तो एविडेंस है, उसको भी हम नहीं छोड़ सकते हैं। एंड दैट इज द वे दैट इमोशनल कोशेंट बढ़ाने का जो काम है वो हम सब करते जाएंगे तो डेफिनेटली हमारी फ्यूचर जनरेशन बहुत हेल्दी हो जाएगी। कैथरीन मॉन्क, उसने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, शी इज इन यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, एंड उन्होंने देखा कि पहले उन्होंने एनिमल स्टडीज से शुरू किया, पर जब उन्होंने प्रेग्नेंट मदर्स और उनके बेबीज पर एक्चुअली रिसर्च करी तो दे एक्चुअली फाउंड आउट द स्ट्रेस हार्मोनल लिंक। तो कई लोग सोचेंगे कि किस तरह से वो हार्मोन्स का असर हमारे बेबी पर होता है। आपके जितने भी थॉट्स हैं वो आपकी बॉडी और आपके माइंड पर असर करती हैं, उसी तरह बेबी की बॉडी और माइंड पे भी असर करती हैं। तो इस समय हमें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम बहुत इम्पोर्टेंटली मदर की, फादर की और फैमिली की बहुत अच्छी काउंसलिंग करें, क्योंकि वो जितनी चीजें समझते जाएंगे और करते जाएंगे उतना ही उनके बेबी की डेवलपमेंट माइंड की भी बहुत अच्छी होगी। ब्रेन और माइंड ये दो अलग एंटिटीज हैं, बट रिसर्चर्स को ब्रेन को भी स्टडी करने में बहुत बहुत चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि ये जो थॉट्स हैं ये ब्रेन के साइज को, ब्रेन की फंक्शनिंग को, ये ब्रेन की बायोकेमिस्ट्री को, ये सबको ऑल्टर करते हैं। बहुत सारी बॉडी में हमारे चेंजेस आते हैं, हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस है, हमें पता है एक कॉर्टिसोल लिंक है, जितना हमारी बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट होता है उतना ही हमारा स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल निकलता है और वही जाकर हमारे बेबी की बॉडी को भी रिंस करता है, उसके ब्रेन में भी उसी स्ट्रेस के जो रिसेप्टर्स है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स उन पर भी जाके एक्ट करता है। तो अगर स्ट्रेस हार्मोनल लिंक है तो डेफिनेटली फील गुड हार्मोनल लिंक भी है, इसमें भी हमें कोई और बात नहीं लगती, क्योंकि अगर स्ट्रेस का हार्मोन क्रॉस करता है तो हमारा फील गुड हार्मोन भी क्रॉस करता है। तो अगर वो फील गुड हार्मोन्स जो हम सिक्रीट करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कुछ अनुभव हैं जो आप सबने सुने हैं और हमें भी हमेशा वो गुड हार्मोन्स को सिक्रीट करने की प्रेरणा मिलती रहती है, और हमारे जब सिक्रीट होते हैं तो हमारे पेशेंट्स के भी बहुत सिक्रीट होते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट मिरर न्यूरॉन थ्योरी है कि हम सबके माइंड से एक दूसरे से बहुत लिंक्ड हैं। इफ यू टुडे कम एंड एंटर माय रूम एंड आई एम स्ट्रेस्ड और एंशियस अबाउट समथिंग, डेफिनेटली वो पेशेंट को भी ट्रांसमिट होता है, वो पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में भी जाता है। तो इसीलिए हम लोग जब अपने ऊपर काम भी करने लगते हैं एंड ऑटोमेटिकली पेशेंट्स को भी ये बात समझाते हैं तो उनको डेफिनेटली समझ आती है, एंड देन व्हेन इट इज देयर एक्सपीरियंस इट डजंट टेक टाइम। ये स्टडीज ने सिर्फ हमें और मोटिवेट किया है इस चीज को समझाने के लिए, बिकॉज बहुत साइंटिफिक डिबेट चली है नेचर वर्सेज नर्चर, तो नेचर इम्पोर्टेंट है या नर्चरिंग इम्पोर्टेंट है। हमें पता है कि हमारी जीन्स जो हैं वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत वैल्यूबल है इनफैक्ट बोला ही यही जाता था कि वी आर एक्चुअली अ ब्लूप्रिंट ऑफ आवर जीन्स, बट आज साइंटिफिक वर्ल्ड ने ये क्लियर कर दिया है कि ऐसा नहीं है. नर्चरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव एंड द मोस्ट क्रिटिकल एंड द मोस्ट म्यूटेटिव पीरियड ऑफ वन्स लाइफ इज दीज 9 months ऑफ प्रेगनेंसी एंड द फॉलोइंग 2 years. तभी आज सबको 1000 डेज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया हुआ है. तो ये इम्पोर्टेंट साइंटिफिक फैक्ट्स हमें ये बताते हैं कि अगर हमारी नर्चरिंग नाइस है, वो राइट है, उसमें हमें समझ आ गया कि क्या करना है, तो हमारा बेबी डेफिनेटली सोशली बहुत ज्यादा स्टेबल, इमोशनली हेल्दी पैदा होगा. क्योंकि हमारी जीन्स कब ऑन हो रही हैं, कब ऑफ हो रही हैं, हमारे एपिजेनेटिक स्विचेस जो हैं, जो जीन्स पर बैठे हुए हैं, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है हमारे स्टेट ऑफ माइंड पे, हमारी डाइट पे, हमारे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस पे. तो ये वूम के एनवायरनमेंट को हमें बहुत ब्यूटीफुल रखना है. तो मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा ये बोलती हूँ, सब प्रेग्नेंट पेरेंट्स को बोलती हूँ कि देखो, हमारी संस्कृति में भी गर्भ संस्कार को बहुत प्यारा मीनिंग दिया था. उनको बोला गया था कि गर्भ संस्कार, इसलिए गर्भ वर्ड यूज किया था क्योंकि गर्भ इज एक्चुअली द प्लेस, एक टेम्पल में जहाँ मूर्ति स्थापन होती है. तो आपकी बॉडी भी बिल्कुल टेम्पल की तरह है, तो टेम्पल में किस तरह के वाइब्रेशंस होनी चाहिए, क्योंकि आपका बेबी भी वो डिवाइन बेबी है जो उसके अंदर बैठा हुआ है. तो जैसे ही टेम्पल में कोई जाता है, कितना पीस लगता है उसको, तो आप भी वैसे ही सीक्रेट करो. और कभी कभी अगर थोड़ा एंगर, थोड़ा गुस्सा आ भी गया, इफ यू अंडरस्टैंड यू हैव द पावर टू चेंज, बिकॉज वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द होल कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस, यू विल नो दैट यू कैन डू इट, बिकॉज साइंस हमें बताता है क्या करें. बट स्पिरिचुअलिटी हमें वो पावर देती है कि कैसे करें. तो ये चीज हमें जरूर जरूर सब एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स और फैमिलीज को बतानी है. क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसे होंगे पेरेंट्स जिनको स्पिरिचुअलिटी समझ भी नहीं आती, जो कहते हैं हमें तो मेडिटेशन होती ही नहीं है और हमें जरूरत भी नहीं लगती. वी फील वी आर क्वाइट ओके, वी आर क्वाइट हैप्पी, वी आर क्वाइट सेटल्ड, देयर इज लॉट ऑफ हार्मनी इन आवर फैमिली, तो मुझे जरूरत नहीं है उसकी. बट आई स्टिल फील, हम सब के अनुभवों के हिसाब से, जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने ये फॉलो किया उनके अनुभवों के हिसाब से, इसका बेनिफिट तो है ही. तो कम से कम इस समय पर जब एक और लाइफ क्रिएट कर रहे हैं, उसकी बॉडी और माइंड क्रिएट हो रहा है, अगर हम थोड़ी सी अध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ के रूटीन में जगह दे दें, तो उसकी बेनिफिट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा उनको फील होंगे. बिकॉज वी हैव टू सी दैट व्हाट काइंड ऑफ अ चाइल्ड आर वी रेयरिंग एट द एंड ऑफ 20 years. हम बार बार ये कहते हैं, इमेजिन कि इतना क्योटिक टाइम जो आज चल रहा है, आज हम इमोशनली स्टेबल हैं, सो वी आर एबल टू क्रॉस इट. वी डोंट नो व्हाट इज देयर इन स्टोर 20 years अहेड. तो अगर उस समय पर भी उनके पास आज की दी हुई इमोशनल स्टेबिलिटी है, तो कितना इम्पोर्टेंट है उनके लिए ये. तो इस सारी चीज को समझते हुए दे विल बी डेफिनेटली गेनिंग, बिकॉज इस टाइम जो मदर है, शी इज लाइक एन एंटेना. वो एंटेना है जो अपने बेबी को सब कुछ दे सकती है. ये बाहर का वर्ल्ड है जो, ये कैसा है, ये कितना ब्यूटीफुल है, ये कितना सेफ है, ये कितना लविंग है, ये फेयरफुल है, ये एंग्शियस है. जैसे कि बायोलॉजिकल पोस्ट कार्ड दे रहे हो आप अपने बेबी को अबाउट द वर्ल्ड आउटसाइड. इतनी पावर है आप फैमिलीज में, पेरेंट्स में, बच्चे को देने की. तो ये बहुत बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनका बहुत डीप इम्पैक्ट होता है. क्योंकि साइंस ने ये बहुत क्लियरली बताया है कि योर बेबी कैन हियर यू, योर बेबी कैन हैव ऑल द टेस्ट एंड स्मेल, योर बेबी कैन फील द टच. तो ये जितनी भी सेंसेस बच्चे के डेवलप हो रही हैं, मूवमेंट की, टच की, हेयर की, टेस्ट की, स्मेल की, विजन की, ये सब अप्रोक्सीमेटली 14 weeks से ही डेवलप होनी शुरू हो जाती है. तभी तो इतनी इम्पोर्टेंट स्टडी आई थी जिसने बताया कि जो मदर की वॉइस है वो बहुत बहुत क्लियरली बच्चा बोन कंडक्शन से सुनता है. और जो अंदर वूम है, वूम में जो बेसिकली डेसिबल्स है, अबाउट 50 decibel साउंड है, उतनी ही नॉर्मल है जो वूम के वाटर्स में हमारा बेबी फ्लोट कर रहा है. तो उतनी डेसिबल की साउंड से हमारा बेबी रिलैक्स्ड और काम रहता है। तो जैसे ही वो साउंड बढ़ती है बच्चे की हार्ट रेट में बहुत चेंजेस देखे जाते हैं। तो ये तो हो गया फिजिकल इफेक्ट कि अगर कोई ऊंचा बोले, अगर कोई गुस्सा आए, अगर कोई ऐसी बात हो जाए जिससे मदर भी डिस्टर्ब हो जाए तो बेबी का हार्ट रेट चेंज हो जाता है। पर ये चीज तो हम मेजर कर सकते हैं, पर बच्चों में और हम जो चीज नहीं मेजर कर सकते वो ये है कि वो इमोशनल पेन जो है उसको वो कितना आगे तक लेके जाएंगे उन एक्सपीरियंसेस से। तो ये सब चीजें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हमें उनको एक परफेक्ट एनवायरमेंट देनी है। वी आर ऑल्सो फोकस्ड एंड हम बहुत बहुत वर्क भी कर रहे हैं, बिकॉज एवरी पेरेंट वॉन्ट्स टू गिव द बेस्ट टू देयर बेबी। बट वेरी इंपॉर्टेंटली स्लोली स्लोली वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे आर गोइंग टू कैच आपकी हर थॉट, आपकी हर इमोशन। इसीलिए जो बेबी का डेवलपिंग माइंड है उसके ऊपर 5 चीजों का बहुत बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो बहुत स्टडीज हुई, बहुत साइकोलॉजिस्ट ने, उन्होंने हमें बताया कि ये बहुत इम्पोर्टेंट 5 चीजें हैं जिसका इफेक्ट आपके बेबी के ब्रेन पे पड़ता है। तो ये चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा बेबी बहुत हेल्दी, हैप्पी और एक डिवाइन बेबी हो सकता है। हमें यही अपने पेरेंट्स को भी बताना है कि जो एक नई लाइफ को लेकर आ रहे हैं उनको ध्यान क्या रखना है। सबसे पहली चीज उन्होंने बोला लैंग्वेज। लैंग्वेज का बहुत बहुत रोल है, और लैंग्वेज में 2 चीजें आती हैं। लैंग्वेज में वर्ड्स भी आते हैं और लैंग्वेज में इमोशंस भी आती हैं। और बेबी को आप एक्सपोज करें बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज, बहुत अच्छी वोकैबुलरी से। हार्वर्ड में एक स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि एक दिन में, इन वन डे, अ बेबी इज हियरिंग अबाउट 5,000 वर्ड्स विच आर स्पोकन बाय बोथ पेरेंट्स। क्योंकि बाहर तो जनरली 2 ही लोग होते हैं या कोई केयरटेकर आया थोड़ी देर, तो इंडिया में तो मुझे लगता है वो डबल तो होगा ही होगा। तो अगर हमें इतनी पावर है उसको ब्यूटीफुल वर्ड सुनाने की, तो हमें फिर कुछ समय गुड लिसनिंग का तो जरूर रखना चाहिए, ताकि उस समय हम बच्चे को सिर्फ और सिर्फ ब्यूटीफुल लैंग्वेज सुनाए, वो लैंग्वेज जिसमें आप अपने सुप्रीम फादर से कनेक्ट करते हैं। कितनी अच्छी फीलिंग होगी वो, क्योंकि वो बेबी के माइंड में भी जाकर बहुत अच्छी मैकेनिक्स क्रिएट करेगा, फील गुड हॉर्मोन्स क्रिएट करेगा। और हमारा बेबी का जो मेमोरी है वो डेवलप होना तो शुरू हो ही जाता है 30 वीक से। तो न केवल वो सुनेगा, वो सुनेगा भी, वो याद भी रखेगा और फिर उस नॉलेज को यूज भी करेगा, जैसे अभिमन्यु ने किया था। क्योंकि हम सब भी तो अभिमन्यु अंदर बना सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जब अपने पेरेंट्स को हम बताते हैं सो दे आर वेरी वेरी हैप्पी, एंड उनको वो रिजल्ट्स भी दिखते हैं जब वो फॉलो करते हैं। क्योंकि इतने पेरेंट्स को, जितनों को भी काउंसलिंग की है, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। दूसरी चीज म्यूजिक है, इसीलिए स्पिरिचुअल सॉन्ग्स, डिवोशनल सॉन्ग्स, मंत्रास, एवरीथिंग हैज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि म्यूजिक भी एक बायोलॉजी है, उससे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है बेबी के माइंड पे। तीसरी चीज बहुत इम्पॉर्टेंटली डाइट, प्योर हेल्दी सात्विक डाइट, एंड ऑल ऑफ यू आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ डाइट। तो ये सब चीजें जो हैं, वो हमारे बेबी के डेवलपिंग माइंड पे भी उतना ही काम करती हैं। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो हॉर्मोन्स हमारे बॉडी में सिक्रेट हो रहे हैं उनका भी इम्पैक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे प्लेसेंटा की फंक्शनिंग पर वर्क कर रहा है। तो हमारे हार्मोनल सिक्रेशंस इन 3 चीजों पर बहुत बहुत असर करते हैं। एंड फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग इज रेगुलर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, योगा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अगर हम करते हैं तो हमारी बॉडी बहुत रेगुलेटेड चलती है। सो ये सब चीजें माइंडफुल प्रेगनेंसी, जिसको हम कहते हैं माइंडफुल कनेक्शन, कॉन्शियसली कनेक्टिंग टू योर बेबी, बॉन्डिंग विद योर बेबी, अटैचमेंट विद योर बेबी, ये सब चीजों का बहुत बहुत रोल है। और जब एक स्पिरिचुअली हम इवॉल्व होते जाते हैं, हम अपने लाइफ स्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस लाने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका बहुत डीप इम्पैक्ट हमारे बेबी की पर्सनैलिटी पर पड़ता है। तो इसीलिए जब कोई पूछे कि कब समय है ये सब अच्छी चीजें करने का, नॉट एट द टाइम ऑफ बर्थ, द टाइम इज नाउ व्हेन द बेबी इज विद इन यू। बिकॉज रोज एक कॉन्शियस थॉट क्रिएट करें कि माई बेबी इज बीइंग क्रिएटेड बाय द सुप्रीम फादर थ्रू मी फॉर द एंटायर वर्ल्ड। ये बहुत छोटे छोटे एफर्मेशन है, बट बहुत बड़ा बड़ा डीप इम्पैक्ट ये सब छोड़ते हैं हमारे लिए। और यही चीज जब आने वाले 2 ईयर्स में भी हम कंटिन्यू रखेंगे तो उसकी बॉन्डिंग और अटैचमेंट जो है वो इतनी अच्छी होगी बिकॉज पोस्टनेटली आफ्टर द बेबी कम्स इन योर आर्म्स यू हैव टू बी वेरी वेरी जेंटल केयर गिवर बिकॉज उस समय पे कुछ हॉर्मोन्स हैं जो मदर्स के बहुत हेवायर जाते हैं तो प्रॉपर गाइडेड सपोर्ट सिस्टम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर स्पिरिचुअल इवोल्यूशन उसकी चल रही होगी उन 9 मंथ्स में तो डेफिनेटली हमारे को ये बहुत स्टडीज में क्लियरली बताया गया है कि रिस्क ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन रिस्क ऑफ अदर इमोशनल इंस्टेबिलिटीज इन द मदर एज वेल एज बेबी जिसमें हम एक्सेसिव क्राइंग एक्सेसिव कंफ्यूजन बहुत सारी चीजें आती हैं वो सब चीजें ऑटोमेटिकली नहीं आएंगी बिकॉज आपने नर्चरिंग ही बहुत परफेक्ट एंड ब्यूटिफुल करी है एंड जब हम कोई स्टडी करके उसको प्रूफ कर लेते हैं तो हमारे एंशियंट लिटरेचर ने जो जो हमें बोला हुआ है हम उसको और कन्विंसिंगली फॉलो भी करते हैं तो लाइफस्टाइल में हमें बहुत छोटे छोटे चेंजेस लेके आने हैं जिसकी वजह से हम एक बहुत ब्यूटिफुल डिवाइन बेबी को अंदर क्रिएट कर सकते हैं तो यही सब चीजें हैं अगर हम करते जाएंगे रेगुलरली इन वन गो तो हम देखेंगे कि हम अपने बेबी के संस्कार के ऊपर एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमने अगर उस समय पर नहीं डाला तो अभी नहीं डाल सकते कभी जो एपिजेनेटिक है जो जीन्स के ऊपर इफेक्ट हमारे बॉडी का के हॉर्मोन्स का हो सकता है वो तो इवन बाद में भी हो सकता है इवन टूडे आई हैव द पावर टू चेंज माई संस्कार इनफैक्ट इस टाइम पे भी हमने कई संस्कार चेंज करे हैं तो वो संस्कार चेंज करना तो सोल के लिए एक बहुत नेचुरल और इजी फिनोमेना है बट इस समय पे बहुत थोड़ी मेहनत से हम बहुत राइट संस्कार दे सकते हैं और जो पुराने बेबी के आ रहे हैं संस्कार उसके ऊपर भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो इसलिए ये सब चीजें आगे भी हो सकती है इवन एट दिस एज बट ये वाले समय पे जब वो एक सेल से ह्यूमन बेबी बन रहा है उस समय के बहुत बहुत इजी होता है और पर्सनालिटी भी हमारी अच्छी हो गई ताकि हमारे जो डिप्रेशन अटेंशन डेफिसिट लर्निंग डिसेबिलिटीज वो भी कम देखी गई इन बच्चों में और यहाँ तक कि इतना ही तो नहीं रुकता वो डिवाइन मोमेंट वो मिरेकल मोमेंट जब जो चाइल्ड बर्थ का होता है जब आपका बेबी आपकी आर्म्स में आता है वो बहुत ही नेचुरली आ जाता है हमारा इंटरवेंशन ऑपरेशन से और दूसरे इंस्ट्रूमेंट से वो बहुत बहुत कम हो गया है एंड हमने अपने बहुत पेशेंट्स पे इस प्यारे से प्रोसेस को एक्सपीरियंस किया है सो आपको सिर्फ वो लाइफस्टाइल चॉइसेस करनी है क्योंकि जब हम करते हैं हम उसके रिजल्ट्स देखते हैं फिर देयर इज नो टर्निंग बैक देन इट जस्ट स्टेट्स सो उन सबको मोटिवेट करें अपने लिए एक स्पेशल मी टाइम एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कुछ समय पॉजिटिव एफर्मेशन सुनी डिवाइन सॉन्ग सुनी एंड गुड लिसनिंग करी पॉजिटिव लिसनिंग करी जिससे खुद भी उनका इमोशनल क्वेश्चन बढ़ेगा और हमारे आने वाले बेबी का भी इमोशनल क्वेश्चन बढ़ता चला जाएगा
ओम शांति। आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है रोल ऑफ नर्सिंग प्रोफेशनल्स इन हीलिंग। आप सभी को पता है कि नर्सिंग प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन है। आदि से लेके हर घर में रहने वाले बुजुर्ग हो या बच्चा हो जो भी बीमार होता था उसकी सेवा की जाती है और इसीलिए कि आदि की जो हमारी प्रथम माता है वो भी प्रथम नर्स थी और नर्सिंग इज अ आर्ट इसलिए कहते हैं कि नर्सिंग एक कला है लेकिन धीरे धीरे इस नर्सिंग प्रोफेशन में बदल गया अर्थात व्यवसाय में बदल गया है और नर्सिंग प्रोफेशन को व्यवसाय में बदलने वाले हमारे नर्सिंग प्रोफेशन की पायोनियर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इस वर्ष ये उनकी 200वीं जन्म तिथि के उपलक्ष्य में यह वर्ष विशेष नर्सेस के लिए डेलीगेट किया गया है द ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ। और उन्होंने शुरुआत से ही कहा है नर्सिंग इज एन आर्ट, एंड इसके लिए ये आर्ट को हमें अच्छी रीति से करने के लिए डिवोशन की बहुत जरूरत है। और वर्तमान समय हम देख रहे हैं कि नर्सिंग प्रोफेशन ये मेडिकल साइंस का अभिन्न अंग बन गया है। अगर आप कहो डॉक्टर ने कितना भी अच्छा ऑपरेशन किया हो, लेकिन अगर नर्सेस ने पोस्ट ऑप केयर प्रॉपर नहीं की तो ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता। अभी रिसेंटली जुलाई मंथ, इसी साल के जुलाई मंथ की बात है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में एक पेशेंट एएनसी मदर आई हुई थी जिसके डिलीवरी के द्वारा उसने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और बाद में बहुत सारा उसको ब्लीडिंग अर्थात रक्तस्राव होता रहा और डॉक्टर्स की टीम सजेस्ट करती रही कि इसका हमें वापस शायद दूसरा ऑपरेशन करना पड़ेगा, पेशेंट को सेकेंड टाइम ओपन करना पड़ेगा। तो उसी समय ऑपरेशन थिएटर में स्क्रब नर्स जो थी उसने एडवाइस दिया, एक सजेशन दी कि अगर हम दोनों जुड़वा बच्चों को मदर को ब्रेस्टफीड दे दिया जाए, बच्चों को ब्रेस्टफीड दिया जाए तो हो सकता है यह ब्लीडिंग कम हो जाए। और रियली एज अ मेडिकल फैक्ट जैसे बच्चों को ब्रेस्टफीड दिया गया वैसे मदर का ब्लीडिंग कम हो गया। तो देखो एक नर्स की उसने जो सजेशन दिया, और मैं डॉक्टर्स की भी बहुत थैंक्स देती हूँ कि उन्होंने उस नर्स के सजेशन को स्वीकारा और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट किया, तो बहुत बड़ी सर्जरी से सेकेंड टाइम जो सर्जरी करने वाली थी उससे बच गए। तो हम देखते हैं कि नर्सेस आर द बैकबोन ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम। फिर हम देखते हैं कि नर्स के लिए कहा जाता है कि दुआएं, जो दुआएं हैं नर्सिंग व्यवसाय में बहुत सारी मिलती है, क्योंकि नर्स ही एक ऐसे है कि जो पेशेंट के साथ 24/7 होती है। मैक्सिमम समय नर्सेस ही पेशेंट्स के साथ होते हैं, डॉक्टर्स तो आते हैं, राउंड लेते हैं और ऑर्डर्स देकर चले जाते हैं, लेकिन पेशेंट के साथ नर्स ही सारी उसके ऑर्डर्स कैरीड आउट करते हैं। तो इसीलिए नर्स के लिए कहा गया है, बहुत अच्छा ये है, नर्स जन्म के उस बात के लिए भी साक्षी है और मृत्यु के लिए भी, कि अ नर्स इज अ वन हु ओपन्स द आईज ऑफ अ न्यू बॉर्न एंड जेंटली क्लोज द आईज ऑफ ए डाइंग मैन। और ये रियली जन्म और मृत्यु के लिए उनका सबूत देने की विटनेस नर्स रहती है। एक पेशेंट ने अपना फीडबैक देते हुए नर्स के लिए बहुत अच्छी सेंटेंस कहे थे, उन्होंने कहा कि नर्सेस डिस्पेंस कंफर्ट कंपैशन एंड केयरिंग विदाउट इवन प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर्स आते हैं मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन तो लिखकर चले जाते हैं, लेकिन नर्स जब अपने पेशेंट्स की केयर करती है तो उस समय पेशेंट को कैसे कंफर्ट दिया जाए, कैसे कंपैशनेट केयर दी जाए और कैसे उसकी केयरिंग की जाए, वो तो उस प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर लिखते नहीं है, फिर भी नर्सेस वो सारी सेवाएं देती रहती हैं। जैसे जैसे मेडिकल साइंस एडवांस होते जा रहा है वैसे वैसे नर्सेस का रोल भी एक्सपांड होते जा रहा है। शुरुआत में तो नर्स सिर्फ केयर प्रोवाइडर थी, जो भी मरीज उनके पास आता था उसे केयर देना, उसकी पूरी संभाल करना, यह नर्स का काम था। लेकिन उसके रोल में भी चेंजेस आते गए। एट प्रेजेंट नर्सेस आर द एजुकेटर, पेशेंट को एजुकेशन देना उसके बीमारी के बारे में, इवन सिर्फ पेशेंट ही नहीं पेशेंट के रिलेटिव्स को भी एजुकेशन देना, एडवाइस करना, सारी बातों को मैनेज करना, क्योंकि नर्सेस ही की पर्सन होती है। डॉक्टर्स के साथ मैनेज करो तो की हाउसकीपिंग स्टाफ के साथ मैनेज करो, अदर डिपार्टमेंट के साथ भी नर्सेस ही कोलैबोरेट करती है, तो कोलैबोरेशन का एक रोल है। देन शी इज अ लीडर, क्योंकि नर्सेस में एक लीडर क्वालिटी होती है, क्योंकि एक हेल्थ केयर में टीम वर्क है तो सबको लेकर चलना, तो एक लीडरशिप की क्वालिटी भी उसके रोल में आती है। और आए दिन रिसर्चर, एक रिसर्च जो भी हमारे नए नए डिसीजेस आ रहे हैं उसके ऊपर नर्सेस भी रिसर्च करती है। लेकिन इन सारे रोल्स में हम देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल जो नर्स का एकदम शुरुआत के दिनों में था, वो इम्पॉर्टेंट रोल हीलिंग का वह कहीं ना कहीं थोड़ा मिस होता हुआ नजर आ रहा है। कहते हैं भगवान ने जब अपनी सृष्टि बनाई कलयुगी दुनिया की, जब उसने अपने सृष्टि को देखा तो उसने कहा कि आई रिक्वायर्ड वन हीलर एंड गॉड मेड नर्स। तो नर्स का काम होता है मेन पेशेंट्स को हील करना। हम जब नर्सिंग केयर तो देते हैं, लेकिन साथ साथ अगर वो केयर में हीलिंग का पार्ट नहीं है तो पेशेंट जल्दी रिकवर होने में देरी लग जाती है। अभी जैसे लास्ट मंथ में हम सभी ने नवरात्रि सेलिब्रेट की, तो नवरात्रि के दिनों में बहुत अच्छा नर्सिंग के लिए ये पिक्चर्स आए हुए थे कि नर्स एक देवी के अवतार में अपने शस्त्र रूपी सिरिंजेस से द्वारा कि इस समय जो कोरोना का महामारी सारे विश्व पर फैली हुई है उसका नाश कर रही है। ऑपरेशन थिएटर में कार्यरत नर्सेस अपनी आईवी फ्लूइड्स से आईवी स्टैंड से आप सुंदर पिक्चर ये देख रहे हैं कि कैसे नर्सेस भी एक देवियों का ही रूप है। जैसे बात हो रही थी कि हीलिंग की, कि इम्पॉर्टेंट रोल जो नर्सेस का, नर्सिंग प्रोफेशनल्स का हीलिंग का है, मुझे याद आ रहा है कि जब हमने नर्सिंग की ट्रेनिंग शुरू की थी तो फर्स्ट डे ही नर्सिंग की ट्रेनिंग में हमें यही बताया गया था कि हमें जीवन में हमेशा 3 H ध्यान में रखने हैं। 3 H कौन से? एक तो हैंड, लेकिन हैंड हमारे कैसे हो? हीलिंग हैंड हो। हेड हमारा कैसे हो? कूल हो। एंड हार्ट हमारा क्लीन हो। ये 3 H द्वारा ही हम पेशेंट्स की केयर बहुत अच्छी से कर सकते हैं। इसीलिए जो नर्सेस की प्रेयर होती थी तो उस प्रेयर में हम यही कहते थे, लेट मी टच ईच वन विथ हीलिंग हैंड एंड द जेंटल आर्ट फॉर विच आई स्टैंड। तो जो भी हमें केयर करनी है वो हमें हमेशा ध्यान रखनी है। जो भी प्रोसीजर्स हम कर रहे हैं कि हम जो प्रोसीजर्स कर रहे हैं इन हाथों द्वारा, उससे पेशेंट्स को उसकी हीलिंग हो जाए। एंड नर्सिंग केयर विद अ क्लीन हार्ट हमें करनी है। नर्सिंग इज अ वर्क ऑफ द हार्ट कहा जाता है। अभी हम देखते हैं कि हीलिंग के लिए, पेशेंट्स हीलिंग के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो गुड लिसनर बनना। सेकेंड इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड, पेशेंस, धैर्यता एंड बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप एंड लव। एंड लास्ट इज अ वर्क ऑन ओन हीलिंग, खुद के हीलिंग के भी कार्य करना है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि गुड लिसनर। आज के इसमें देखते हैं कि जिस प्रकार से पेशेंस बढ़ते जा रहे हैं, नर्सेस और पेशेंट का जब हम रेशियो देखते हैं तो पेशेंट बहुत ज्यादा है, नर्सेस का काम बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे समय पे पेशेंट्स हमें जो भी अपनी कंप्लेंट्स करता है उसको सुनने के लिए टाइम नहीं होता है। लेकिन कई बार ये देखा गया है जब हम पेशेंट्स या पेशेंट्स के रिलेटिव की बातें प्यार से सुनते हैं तो उसमें उनकी हीलिंग बहुत जल्दी होती है। मुझे याद आता है कि कुछ दिन पहले हमारे हॉस्पिटल में एक महिला एडमिट हुई थी, फीमेल, और वो बहुत कंफ्यूज लग रही थी। उसकी सर्जरी के लिए वो एडमिट हुई थी। इतनी कंफ्यूज थी कि वो आधे घंटे पहले कहेगी कि हाँ मैं ऑपरेशन के लिए रेडी हूं, और आधे घंटे के बाद वापस बुलाकर कहती थी कि नहीं मुझे ऑपरेशन नहीं करना है, मुझे तो घर जाना है। और फिर मैंने देखा कि मैंने उससे प्यार से बात की, उसकी सारी बातें सुनी, और जब बातें सुनने के बाद उसे लगा कि रियलाइज, मैंने कहा कि देखो इस ऑपरेशन से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, भले डॉक्टर ने आपको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि उसको अपने घर में रहने वाले बच्चे की बहुत चिंता सता रही थी। तो उसको फिर मैंने बहुत अच्छे रीति से प्यार से एक्सप्लेन किया कि इस ऑपरेशन करने से आपको कैसे फायदा, कैसे बेनिफिट मिलेगा, और मैंने देखा कि वो ऑपरेशन के लिए एग्री हो गई। ये तो चलो रूटीन हमारा पार्ट है, लेकिन जब सर्जरी होकर जब डिस्चार्ज हुआ तो उसने स्पेशल बुलाकर मुझे कहा कि अगर आप उस दिन मुझे नहीं समझाते थे, मेरी बात नहीं सुनते थे, तो मैं ऑपरेशन के लिए कदापि तैयार नहीं होती थी। तो इसीलिए हमें पेशेंट्स की बातें सुनना बहुत जरूरी है। वैसे कहते भी है कि डीप लिसनिंग इज अ हीलिंग, हम जितनी प्यार से उनकी बातें सुनेंगे उतनी उनकी हीलिंग होने में बहुत मददगार हो सकती है। सेकेंड है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव, कई बार हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं कि हम कितनी बार उनको समझाते हैं कि आपको ऐसे करना है, इस प्रकार से मोटिवेट करते हैं, मूविंग उठने के लिए हम उनको बताते हैं कि आपको उठना है, थोड़ा सा चलना है, लेकिन दर्द के मारे पेशेंट्स इन बातों के लिए बिल्कुल मानते नहीं है। तो ऐसे समय हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखकर बार बार उन्हें बताना पड़ता है। फिर है पेशेंस। कई बार हम देखते हैं कि अगर धैर्यता की अगर कमी है कि पेशेंट बहुत उसका होता है कि एटीट्यूड जो बिहेवियर हम कहे कि बहुत गुस्सेल होता है, एग्रेसिव नेचर हो जाती है। नेचुरली पेशेंट जब हॉस्पिटल में आता है तो सिर्फ अकेला ही डिस्टर्ब नहीं होता है अपने बीमारी से, लेकिन उसका पूरा परिवार डिस्टर्ब हो चुका होता है। एक फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है, सेकेंड मेंटली भी प्रॉब्लम्स होती है, फिर फाइनेंशियली भी कई बार पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है जिसके कारण पेशेंट बहुत एग्रेसिव हो जाता है। तो ऐसे समय पे बहुत पेशेंट्स के साथ धैर्यता के साथ पेशेंट के साथ बिहेव करना होता है। और इसमें हम देखते हैं कि हम जितने प्यार से और शांत धैर्यतापूर्वक हम व्यवहार करते हैं तो पेशेंट्स हमारी बात भी मान लेता है। फिर है फ्रेंडशिप, बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप एंड लव। कि फ्रेंडशिप, जैसे छोटे बच्चे जब भी हमारे पास एडमिट होते हैं तो छोटे बच्चे वैसे ही देख के ही आपको देख के ही डर जाते हैं, डॉक्टर्स को देखकर डर जाते हैं, मेडिसिन लेना के लिए रिफ्यूज करते हैं। ऐसे समय पे उनके साथ कैसे फ्रेंडशिप कर कैसे अच्छी अच्छी बातें करके उनके लेवल पर जाकर जब हम बच्चों के साथ ट्रीट करते हैं तो बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिलता है। और ओल्ड एज जैसे है, सीनियर सिटीजन्स है, वल्नरेबल पेशेंट जो होते हैं, तो उनको भी हमें बहुत प्यार से अगर हम ट्रीट करते हैं तो अपनी बातें भी बहुत अच्छी से वो हमें बताते हैं। और कई बार ऐसे होता है, जैसे हमारे यहाँ हॉस्टल्स काफी है माउंट अबू में, तो हॉस्टल में रहने वाला एक बच्चा एडमिट हुआ था और इतना रोए जा रहा था कि उसको मेडिसिन से डर नहीं लग रहा था, लेकिन डर किसी और ही बात का था। ना उसको कोई एग्जाम का डर था ना किसी बात का, लेकिन हॉस्टल में रहने वाले कोई एक व्यक्ति से उसे बहुत डर लग रहा था जिसके कारण वो इतना रोए जा रहा था। जब उससे बहुत प्यार से बात की, उसको समझाया, उसको पूछा कि भाई क्या हो रहा है, क्यों आप इतने रोए जा रहे हो, आप बताओ, हम किसी को भी आपकी बात नहीं बताएंगे। तब उस बच्चे ने बताया कि मुझे ऐसे ऐसे हॉस्टल में प्रॉब्लम है और मैं हॉस्टल में नहीं रहना चाहता हूँ। और फिर जब उसकी मम्मी आई तो हमने उसके मदर को थोड़ा सा ये बात शेयर की अलग रीति से, और हमने देखा कि उसके मम्मी ने भी रियलाइज किया कि मुझे, मेरा बेटा हॉस्टल में नहीं रहना चाहता है जिसके कारण वो बार बार बीमार पड़ता है। तो मैंने देखा कि कैसे हमें प्यार से फ्रेंडशिप के साथ और प्यार से अगर हम पेशेंट से बात करते हैं तो उनके हीलिंग में, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होने में बहुत मददगार हो जाती है। और है लास्ट पॉइंट आती है कि वर्क ऑन योर ओन हीलिंग। इस समय हम देखते हैं कि हमें इफेक्टिव हीलर बनने के लिए हमें क्या क्या काम करना होता है, कि नर्सेस ही खुद इस समय इतनी सारी स्ट्रेस में चल रही है कि जिनको खुद के ओन हीलिंग करने के लिए उन्हें टाइम देना चाहिए। जैसे फिजिकली कैसे हम टाइम दें, इमोशनली कैसे ये करें, और स्पिरिचुअली कैसे हमें हीलिंग के ऊपर काम करना है। कि नर्सेस में बर्न आउट सिम्टम्स ज्यादा है, क्योंकि हम जब देखते हैं कि कोई भी होता है कि नर्सेस जैसे काम और शिफ्ट ड्यूटीज होने के कारण काम तो और कर जाता है, लेकिन उसकी गलती की डांट तो नेक्स्ट शिफ्ट वाली ड्यूटी को मिलती है अगर उसने कुछ गलती की हुई है, जबकि उसकी तो कोई गलती नहीं होती है, लेकिन फिर भी प्रीवियस शिफ्ट वाले स्टाफ ने अगर कोई मिस्टेक की है तो डॉक्टर तो जो ऑन ड्यूटी स्टाफ है उसी ही सुनाते हैं। तो देखती हूँ कि नर्सेस में भी बर्नआउट सिंड्रोम ज्यादा है, तो नर्सेस को भी अपने ओन हीलिंग करने के लिए कार्य करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फिजिकल के ऊपर, कि फिजिकल हीलिंग करने के लिए 3 W's, ऑलवेज रिमेम्बर 3 W's। फर्स्ट W, वेक अप अर्ली। मैं जानती हूँ कि नर्सेस की ड्यूटीज तो शिफ्ट ड्यूटीज होती है, कभी मॉर्निंग ड्यूटी है तो कभी इवनिंग ड्यूटी है तो कभी नाइट ड्यूटी है। ऐसे समय पे वेकअप अर्ली वाला पॉइंट थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर हम ये आदत लगा देते हैं तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। कई बार मैं देखती हूँ कि अगर डे ऑफ होता है, कई नर्सेस हॉस्टल में रहने वाली जो नर्सेस है डे ऑफ है, तो उस दिन आराम से उठेंगे, कहेंगे अरे आज तो हमारा ऑफ है, आज तो कोई काम नहीं है। लेकिन हम बॉडी को अपने जैसे आदत लगाएंगे वैसे बॉडी हमारी बनती जाती है। तो यह वेकअप अर्ली वाला हम नर्सेस को थोड़ा इस पॉइंट पर ध्यान देना चाहिए। सेकेंड W, वॉकिंग एंड एक्सरसाइज। वॉकिंग एंड एक्सरसाइज में जब कभी वॉकिंग के लिए कहा जाता है तो कहते हैं कि हमारी वॉकिंग तो वार्ड में ही हो जाती है, इतने सारे पेशेंट्स के पास आना पड़ता है, जाना होता है, इतने चक्कर पेशेंट्स के पास हमें काटने पड़ते हैं, तो ऑन ड्यूटी ही हमारी वॉकिंग हो जाती है। लेकिन वो वॉकिंग तो वॉकिंग नहीं है ना, वो तो जब हम काम में होते हैं तो, लेकिन हमें जब समय मिले तब हमें वॉकिंग के लिए बाहर निकलना चाहिए, नेचर के साथ वॉकिंग करनी चाहिए, नेचर के साथ वॉकिंग करने का आनंद लेना चाहिए। ऐसे नहीं हम वॉकिंग के लिए निकले हैं लेकिन हमारे हॉस्पिटल का या कोई घर का टेंशन लेकर हम वॉकिंग कर रहे हैं, तो उसका भी हमें इतना बेनिफिट नहीं मिल सकता है। लेकिन इसलिए कह रही हूँ कि जब भी हम वॉकिंग के लिए जाए तो हम नेचर का आनंद उठाएं। और सेकेंड इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है कि आजकल तो एक्सरसाइज की बहुत जरूरत है, जैसे आसन है, प्राणायाम है और अदर एरोबिक्स एक्सरसाइज है। जैसे हमें टाइम मिले, जब भी मिले, हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। थर्ड W है वॉचफुलनेस। स्वयं के लिए वॉचफुलनेस होना है। वॉचफुलनेस अर्थात कि अलर्ट होकर शार्प माइंडली ऑब्जर्वेशन स्वयं का, खुद का हम करें। पेशेंट्स का तो हम ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं, पेशेंट्स के लिए तो तुरंत हमारे ध्यान में आ जाता है कि अरे पेशेंट का ये सिम्टम्स दिखाई दे रहा है तो हो सकता है पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन स्वयं के लिए तो हम कभी इस बारे में सोचते ही नहीं है। तो इसीलिए फिजिकल में हमें ये 3 W's हमेशा याद रखने हैं। फर्स्ट W वेकअप अर्ली, सेकेंड W वॉकिंग एंड एक्सरसाइज, एंड थर्ड W इज वॉचफुलनेस। अपने लिए भी वॉचफुलनेस अर्थात ऑब्जर्व स्वयं को करते रहना। और यही होता है टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। स्वयं की हमें अपनी संभाल करनी है। सेकेंड आता है इमोशनल हीलिंग। इमोशनल डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। आजकल फिजिकल डिटॉक्स तो हम कर लेते हैं, लेकिन हमारे इमोशंस के बारे में क्या है? और कोरोना काल में तो कई प्रकार के स्ट्रेस इतनी बढ़ गए हैं। अभी रिसेंटली एक सिस्टर का मुझे फोन आया था, काफी सीनियर मोस्ट सिस्टर थी, और वो कोरोना पेशेंट्स की ही केयर लेते लेते वो स्वयं पॉजिटिव हो गई। और जब वो पॉजिटिव हो गई तो क्वारंटाइन में गई। क्वारंटाइन में जब जा रही थी तो जैसे उसके साथ लोगों का व्यवहार था, उसके कलीग्स का, उनकी मना जो कंसल्टेंट्स है उनका व्यवहार था, वो देखकर वो सिस्टर ने कहा कि मुझे तो ये कहो कि मैं मान ही नहीं सकती है, मुझे तो इन्हीं बातों का स्ट्रेस हो रहा है कि मेडिकल प्रोफेशन के लोग होकर इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। पॉजिटिव तो कॉमन बात है सब में, और पेशेंट की सेवा करते करते ही हम पॉजिटिव बने हैं। तो फिर उसे समझाना पड़ा मुझे कि नहीं, उसमें क्या है, सबका व्यवहार अपना अपना होता है, लेकिन आप अपने अपने पर ध्यान रखो, अपने इमोशंस पर ध्यान रखो। ये जो नेगेटिव फीलिंग्स है, नेगेटिव भावनाएं हैं, उनको आप निकाल दो। तो इसलिए हमें जब भी नेगेटिव फीलिंग हमारे मन में आती है, तो उस नेगेटिव फीलिंग्स हमारी क्या क्या है उस पर हमें काम करना चाहिए। देन सेकेंड, राइट डाउन द ट्रिगर्स। कई बार ऐसे होता है कि कुछ ऐसे बातें हमारे सामने आ जाती है और हमें एकदम गुस्सा आ जाता है। कुछ कोई गलती करता है, हमें गुस्सा आ जाता है। किसी ने कोई काम ठीक नहीं किया, हम इरिटेट हो जाते हैं। तो ये होती है छोटी छोटी बातें, लेकिन ये भी हमें, ये छोटी बातें हमें धीरे धीरे बड़ी बातों में, नेगेटिव फीलिंग्स में परिवर्तन करती है। तो ऐसे छोटी बातों को हमें अपने स्वयं को, इमोशनल्स को चेक करते हुए लिख कर रखनी है। और थर्ड इज कि हमारे अंदर जो भी नेगेटिव फीलिंग्स हमने सप्रेस करके रखी हुई है, जो भी बातें कई समय की बातें होती है जिसको हमने सप्रेस करके रखा हुआ है, कि एज अ नर्सिंग प्रोफेशन हमें पता है कि अगर कितने सारे साइकोसोमैटिक डिसीज है, और जितने हम नेगेटिव बातें, जो फीलिंग्स है, सप्रेस करके रखते हैं, तो जिसके कारण नई नई डिसीजेस होने के चांसेस है। तो ऑल नर्सेस को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने इमोशंस पर ध्यान दीजिए। जो भी नेगेटिव फीलिंग्स है, उस नेगेटिव फीलिंग को निकालिए, उनको सप्रेस नहीं कर रखिए। तो कई बार ऐसे होता है, क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन है और डे बाय डे जो एक्सपेक्टेशंस है हमारे से, पेशेंट्स की एक्सपेक्टेशंस है, डॉक्टर्स की एक्सपेक्टेशंस है, जिसके कारण कई बार बहुत स्ट्रेस आता है, और हमारे बहुत सारे स्ट्रेस आने के कारण माइंड में निगेटिव फीलिंग आते हैं। जैसे मैं जिस सिस्टर की बात कर रही थी, उस सिस्टर ने एक बात मुझे कही कि मुझे तो अभी जैसे कि पॉजिटिव शब्द से ही मुझे ये हो गया है, कि जैसे कहो कि नफरत में हेट करती है, कि जैसे कोरोना काल में उसके साथ जिस प्रकार से व्यवहार किया गया, तो कहती कि मुझे ऐसे कि नेगेटिव वर्ड अच्छा लगता है। तो देखो, कोरोना भले एक डिसीज है कि वो आएगा और जाएगा, लेकिन जो ये है इमोशनल जो हर्ट हुआ है, इमोशनली जो डैमेज हुआ है, तो मैं उस सिस्टर को बहुत उसकी काउंसिलिंग की और उसको समझाया कि हमें इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए। हमें, हम सिर्फ अपने पेशेंट्स के प्रति हम पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाते हैं, तो क्या हमें अपने प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं अपनाना है? तो हमारे इमोशनल डिटॉक्सिकेशन बहुत बहुत जरूरी है। उसके बाद है स्पिरिचुअल हीलिंग। हम अपने आप को स्पिरिचुअल हील कैसे करें? एक तो है प्रेयर्स द्वारा, कि जब भी आपको ऐसे लगता है प्रेयर्स कर सकते हैं। इसलिए आजकल हॉस्पिटल्स में कई सारे मंदिर टेम्पल्स बनाए हैं और मेडिटेशन रूम भी बनाए गए हैं, कि प्रेयर्स भी क्या है, प्रेयर्स भी इट इज अ पॉजिटिव फोर्स ऑफ थॉट है। जब हम प्रेयर्स करते हैं तो हमारे मन में पॉजिटिव थॉट आते हैं, एंड एवरी पॉजिटिव थॉट इज अ साइलेंट प्रेयर विच विल चेंज योअर लाइफ। इसीलिए जब भी आपको लगता है तो आप प्रेयर कर सकते हैं। आप किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी धर्म के हो, प्रेयर आप कर सकते हैं, जिससे हमारी स्पिरिचुअल हीलिंग होने में हेल्प होती है। सेकेंड है डिवाइन वर्चूज। हमें अपने प्रोफेशंस के लिए कुछ ऐसे डिवाइन वर्चूज अपनाने हैं, जो हमारे कोर क्वालिटीज तो नर्सेस की है ही है, कोर वैल्यूज में आती ही है। लेकिन जो ये मेन फोर मैंने लिखे हुए हैं, कि फर्स्ट इज अ कंपैशन। कंपैशन सिवा कि एक अनुकंपा, हम दया कहे, सहानुभूति कहे, उससे ऊपर की बात आती है कंपैशनेट केयर। जैसे हम देखते हैं कि कंपैशनेट केयर में है कि लेडी विद अ लैम्प, हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उन्होंने क्या किया, कंपैशनेट केयर ही अपने सैनिकों को दी, जिसके कारण सैनिकों का जो डेथ रेट था, मॉर्टेलिटी रेट, एकदम कम हो गया था। और उसी समय इतने साल पहले भी उन्होंने किस पर जोर दिया था, हैंड वॉशिंग के ऊपर, और कोरोना काल में भी हम भी किस पर ये कर रहे हैं, हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पर। तो देखो, देख रहे कि कंपैशनेट केयर लेडी विद अ लैम्प जो हमारी पायनियर है उन्होंने की हुई केयर जो है, तो इस प्रकार से हमें भी हमारे पेशेंट्स के लिए कंपैशनेट केयर देनी होगी। कई बार हमें ऐसे होता है कि बहुत सारा वर्कलोड होने के कारण हम पेशेंट्स को प्रॉपर कंपैशनेट केयर नहीं दे पाते हैं, तो हमें इस पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मदर टेरेसा है, मदर टेरेसा का भी हम देखते हैं, उनका एग्जाम्पल है, उन्होंने कहा नॉट ऑल ऑफ अस कैन डू ग्रेट थिंग्स बट वी कैन डू स्मॉल थिंग्स विद अ ग्रेट लव, कि छोटी छोटी बातें भी अगर हम प्यार से करते हैं तो वो बहुत अच्छा उसमें हमें सक्सेस मिल सकता है। एंड थर्ड पर्सन को मैंने देखा है वो है दादी जानकी जी। दादी जानकी जी चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज थे, और वो जब इन्होंने जब इस ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आए तब तो उन्हें सबसे पहली जो सेवा दी गई थी वह थी नर्स की सेवा। जो भी भाई बहने रह रहे थे वो जब बीमार होते थे तो उनकी सेवा करने का काम दादी जी को दिया गया था। और दादी जी कोई हमारी उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, जैसे हम देखते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, मदर टेरेसा है, दादी जानकी जी है, उन्होंने हमारे जैसे कोई ट्रेनिंग नहीं ली है नर्सिंग की, लेकिन जो कंपैशनेट केयर जो दे रहे थे, दिल से जो केयर दे रहे हैं पेशेंट्स को, उससे हीलिंग होने में बहुत हेल्प होती है। जैसे मैं दादी जानकी जी को तो उनके समीप रहने का मुझे सौभाग्य मिला, तो उन्हें मैंने देखा कि जब भी वो विश्व भ्रमण पे तो वैसे होते थे, लेकिन माउंट आबू में जब भी होते थे तो हॉस्पिटल में आकर पेशेंट्स को मिलना, कैसी भी दादी कितनी भी बिजी हो लेकिन पेशेंट्स को बिना मिले नहीं जाती थी। छोटे बच्चों के लिए बहुत प्यार, स्पेशल कैंसर पेशेंट्स के लिए दादी जी घर में जाकर भी उनको मिलकर आती थी कैंसर पेशेंट्स के लिए। और मैं अभी एक आप वीडियो देखेंगे, आप ये वीडियो दादी जी का देख रहे हैं, ये दादी जी का वीडियो 104 ईयर्स की दादी जी जब थी, तो दादी जी की जो केयर टेकर करने वाली, जो दादी जी को संभालने वाली बहन थी, उनको कोई एक हाथ में जख्म हुई थी, तो उनका दादी जी देखो कितने प्यार से ड्रेसिंग कर रहे हैं। जरूरी नहीं है, दादी जी उस समय तो चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी, इतनी बड़ी ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन की चीफ थी, लेकिन फिर भी उनका जो ध्यान रखने वाली बहन है उसका दादी जी ने कितने प्रॉपर तरीके से ड्रेसिंग किया कर रहे हैं दादी जी, और वो भी ड्रेसिंग एट एज ऑफ 104। हम तो अबाव 50 होने के बाद कहने लगते हैं हम तो थक गए, हम तो नहीं करेंगे, और ड्रेसिंग वगैरह जैसे जैसे हम सीनियर होते जाते हैं तो ये सारी बातें हम क्या सोचते हैं कि ये किसका काम है, जूनियर्स का काम है। लेकिन मैंने देखा कि दादी जी ने कहा, ड्रेसिंग करने की जब बात आई तो दादी जी ने कहा कि नहीं, मैं खुद ड्रेसिंग करूंगी। और ड्रेसिंग होने के बाद दादी जी ने जो एक हीलिंग हैंड से हम जो कहते हैं, इतने प्यार से उस बहन के हाथ को दादी जी ने पकड़ा हुआ है, तो उसके बाद तो उस बहन का एक्सपीरियंस था कि मेरे हाथ में जो दर्द हो रहा था वो बिल्कुल ही चला गया है। तो आप देख रहे हैं इस वीडियो में कि देखो दादी जी कितने प्यार से ड्रेसिंग कर रही है और कितने प्रॉपरली दादी जी ये ड्रेसिंग कर रही है। और दादी जी पूछ रही है उस बहन को, दर्द तो नहीं हो रहा है, और उस जख्म को देखो दादी जी ने कितने प्यार से, दादी जी हीलिंग हैंड जो हम कह रहे हैं कि हमें जो सेवा करनी है, हीलिंग हैंड कैसे हमारे होने चाहिए। तो कंपैशन के साथ हम देख रहे हैं कि सेकेंड ट्रस्टवर्दीनेस, कि हमें एक दूसरे पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। बी ऑनेस्ट एंड रिलायबल, कि नर्सिंग प्रोफेशन या कोई भी प्रोफेशन हो उसमें ऑनेस्ट होना तो बहुत ही जरूरत होती है। अगर छोटी सी भी हमारी गलती हो जाती है तो उसी समय हमारी गलती हमें बड़ों के ध्यान पर दे देनी चाहिए। ऑलवेज डू द राइट थिंग, बी लॉयल, नेवर लाय, चीट और स्टील। थर्ड इज अ क्वालिटी हम देखेंगे डिवाइन वर्चुज में, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी इज अ सॉलिड फाउंडेशन ऑफ द ऑल वर्चुज, कि नम्रता के बिना, क्योंकि आप टीम लीडर हो, नर्सेज आर द टीम लीडर, तो एक लीडर में नम्रता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति से व्यक्ति के साथ, हर डिपार्टमेंट के साथ काम करना होता है। तो जब नम्रता होती है तो बहुत आसान हो जाता है वर्क करना। एंड फोर्थ इज अ रिस्पेक्ट फॉर आवर पेशेंट एंड आवर टीम। कई बार हम पेशेंट को तो रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन पेशेंट रिलेटिव को, कई बार ऐसे भी होता है ना कि जो पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट्स तो हमारे अच्छे होते हैं, लेकिन रिलेटिव्स हमें बार बार आकर पेशेंट्स की कंप्लेंट करेंगे, बार बार क्वेश्चंस करते रहते हैं, तो हम इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन हमारे पेशेंट सहित हमारी जो टीम है, वर्किंग टीम है, उनको भी हमें रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। रिस्पेक्ट पीपल्स फीलिंग को देना है उनकी। कई बार ऐसे होता है, हमें लगता है कि ये छोटी सी बात है, इसको क्या सुनना है, इनको क्या करना है, लेकिन अगर हम प्यार से, रिस्पेक्टफुली, सम्मानपूर्वक उनकी बात सुन लेते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और रिस्पेक्ट यह चीज ऐसे है कि आप जितना जितना औरों को रिस्पेक्ट देंगे, उतना उतना रिस्पेक्ट आपको मिलते जाता है। एंड फिर है मेडिटेशन, कि मेडिटेशन नर्सेस को करना बहुत जरूरी है। नर्सेस, हम पेशेंट्स की केयर तो लेते हैं, लेकिन खुद की केयर, उसकी तरफ तो हमें टाइम ही नहीं मिलता है। हम कहेंगे बहुत बिजी थे। जब हम वर्किंग में होते हैं तो कई बार ये हमें सुनने में आता है, आज तो इतना बिजी रहे कि पानी पीने के लिए भी फुर्सत नहीं मिली, इस प्रकार से। लेकिन हाँ, एज अ नर्स हमें स्वयं को हील करने के लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन मेडेरी इस लैटिन वर्ड से मेडिटेशन आया, वर्ड आया हुआ है, और उसका मीनिंग ही है हील थाइसेल्फ, अर्थात स्वयं को हील करना। मेडिटेशन ये एक इनर जर्नी है, द आर्ट ऑफ गोइंग विद इन, अंतर आत्मा की यात्रा कहो। जितना जितना आप मेडिटेशन करते जाते हैं, ये आपके सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मदद करती है। एंड थर्ड इज कि ग्रेटेस्ट हेल्थ सीक्रेट ऑफ द बॉडी एंड माइंड, कि बहुत सारे मेडिटेशन करने से बॉडी और माइंड में बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। लेकिन अभी मैं मेडिटेशन के साथ में आपको ये बताऊंगी व्हाट इज राजयोगा मेडिटेशन। राजयोगा मेडिटेशन हम कैन बी डिफाइन इन थ्री वर्ड्स, थ्री सीज। वन इज कॉन्सेंट्रेशन, कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन। कॉन्सेंट्रेशन, किसके साथ हमें कॉन्सेंट्रेशन करना है? अपने स्वयं के, कि हम कौन है, मैं कौन हूं। हम देखते हैं पेशेंट जब गैस्पिंग कंडीशन में आता है तो हम क्या कहते हैं, हम पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए लग जाते हैं, पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देते हैं, और जितना हो सके जो भी हम पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकते हैं रिकवर होने के लिए, वो हम पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन पेशेंट अगर एक्सपायर हो जाता है तो हम फिर क्या कहते हैं, हम कहते हैं डेड बॉडी, पेशेंट डेड हो गया, और हम ऑर्डर देते हैं कि भाई डेड बॉडी को पैक करो। तो ऐसी कौन सी शक्ति है जो वहां निकल गई है इस शरीर में से, वह है आत्मा। तो हमें राजयोग का मेडिटेशन यही सिखाता है कि स्वयं आत्मा समझकर हमें परमात्मा से, जो सुप्रीम फादर है, उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करना है। आप एक पिक्चर देख रहे हैं कि जहां दादी जानकी जी भी है और मदर टेरेसा भी है, और दोनों बहुत अच्छा कोट दिया हुआ है, टू बी कनेक्टेड टू वन गॉड एंड टू मेंटेन डिटरमाइंड थॉट्स मीन्स यू आर एक्टिंग एज अ इंस्ट्रूमेंट फॉर गॉड। अगर एक गॉड के साथ हम अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं और उसकी सेवा करते हैं, तो हम गॉड के, भगवान के लिए काम कर रहे हैं। तो यह फीलिंग लानी है, एक्सपीरियंस करना है कि गॉड के साथ अपने आप को कैसे, वो सुप्रीम अथॉरिटी के साथ कैसे अपने को कनेक्ट करना है, यह राजयोग मेडिटेशन सिखाता है। एंड थर्ड इज कम्युनिकेशन, कि कैसे हम उस ऑलमाइटी अथॉरिटी के साथ कम्युनिकेशन करें, वाइल वर्किंग, आप काम पर हो, आप रेस कर रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ऐसे समय पे हम कैसे अपने आप को उस हायर अथॉरिटी सुप्रीम सर्जन्स के साथ कनेक्ट करना है। मैं अपना स्वयं का अनुभव सुनाती हूँ कि मैं जब ऑपरेशन थिएटर में कार्यरत थी तो मैं हमेशा जब भी ऑपरेशन थिएटर में एंटर करती थी तो मैं यही कहती थी कि सुप्रीम सर्जन चलो आप मेरे साथ चलिए, आज ऑपरेशन थिएटर में यही केसेस है। और जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आती थी तो मैं उनके साथ शेयर करती थी कि सुप्रीम सर्जन गॉड जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है उनके साथ शेयर करती थी, उनको कहती थी कि आज मुझे ऑपरेशन थिएटर में ये प्रॉब्लम है, आज स्टाफ नर्सेस की कमी है, आज केसेस बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार के साथ जितना जितना कम्युनिकेशन हम करते हैं तो वो भी एक मेडिटेशन हो जाता है और यही राजयोगा मेडिटेशन में सिखाया जाता है। जितना जितना हम राजयोगा मेडिटेशंस करते हैं उससे हमारे अंदर की इनर पावर्स है वो डेवलप हो जाती है, और जितनी इनर पावर हमारी डेवलप होती है तो वो इनर पावर्स हमें डिसीजंस लेने में बहुत मददगार होती है। तो हर नर्स को मेडिटेशन और राजयोगा मेडिटेशन सीखना बहुत जरूरी है। सो राजयोगा मेडिटेशन जस्ट व्हाट यू नीडेड, योगा फॉर द माइंड, योर माइंड के लिए योग है, एंड स्पिरिचुअल टूल फॉर एवरीडे लिविंग। मेडिटेट एनी टाइम एनी वेयर, एट वर्क, रेस्ट एंड प्ले, फाइंड योर इनर स्ट्रेंथ, एनर्जाइज योर डे, एक्सपीरियंस पीस ऑफ माइंड। जितना जितना आप राजयोगा मेडिटेशंस करोगे उतना अपना आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी पीस ऑफ माइंड का अनुभव करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, सारे नर्सेस, आप यू आर नॉट अ जस्ट नर्स, टेक प्राइड इन व्हाट यू डू, यू आर सेविंग लाइफ्स एंड मेकिंग अ डिफरेंस इन अ समवन लाइफ। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि एक नर्स ने जो सजेशन दिया जिसके कारण उस पेशेंट्स के लाइफ में कितना चेंज हो गया, तो यू आर नॉट अ ऑर्डिनरी नर्स। तो जस्ट वर्क एज अ, एक हम कौन है नर्सेस, किस प्रकार से हम पेशेंट्स की लाइफ को बदल सकती है, कैसे हम हीलिंग दे सकती है पेशेंट्स को। सो नर्सेस प्लीज कम, लेट हील्स द वर्ल्ड। इस समय विश्व में जो कोरोना महामारी फैली हुई है उसे हमें सबको मिलाकर स्वयं के हीलिंग के साथ साथ सारे विश्व को भी हमें हील करना है। थैंक यू एंड ओम शांति।
Om Shanti and a very good morning. We are coming to the end of almost 2.5 months program for the young medical professionals, awakening to a new way of healing. It has been a long journey and now we need to make a new beginning. What kind of a beginning? We have been thinking about it. In this area of COVID pandemic, everyone has been talking of immunity. How do we really protect ourselves? How do we boost our immunity? So many formulas, so many combinations have been talked about. How do we really look after our own self? What is self-care? One thing which we need to really understand very well, that self-care is not selfish. When we look after our own self, when we look after our own resources and nurture them and nourish them, is preparing ourselves for the world service, because we medical professionals come from the field of serving, service. Service is our main area of work. Whenever people come to us, they come to us with a lot of expectations. They come with kind of an image of us that like God really takes care of their suffering and gives them happiness, gives them strength, So the doctors would also give them back their health, give them strength, give them zeal and enthusiasm to live. That's what people expect from us. I'm reminded of my dearest Dadi Janki. Whenever she would start a lecture, she would start with reciting Om Shanti, the mantra that I am peaceful, thrice. And she would say, these three Om Shanti stand for one, main kon, mera kon, aur mujhe kya karna hai. Although the last one she started saying that it would happen and she would emphasize on main kon hu aur mujhe kya karna hai. Before I know mujhe kya karna hai, main kon hu, I need to, you must have heard, you must have gone through various meditation sessions and you must have observed that our true nature is to be peaceful. I feel one of the best qualities, one of the foremost qualities, the prime quality is being peaceful, the culture of peace. Today what people need from us is a peaceful listening, a peaceful way of caring about them. People expect us to be more patient. The patients may be impatient. When they come to us, they might have been in pain and suffering for maybe months together or a year together. But when they come to us, they want an instant relief. We need to develop a culture of peace within. We need to, because peace is one quality which heals us. Peace is one quality which strengthens us, which teaches us that in spite of the turmoil around, bahar kuch bhi ho raha hai, bahar ashanti hai, bahar halchal hai, lekin we are expected to be peaceful. Peaceful being, way of peace is trying to conserve our energy, to really look after our own resources. Peace gives us stability. We need to be peaceful. Agar hume shant rehna hai, to hume apne aap ka master banna padega, self-mastery banna padega. And we also need to be a silent, a very patient listener. When we are listening in silence, we are not trying to contradict anyone. तो तब क्या होता है? तब जो जो सामने वाला व्यक्ति है, जो सामने वाली आत्मा है, वो पेशेंट हो या पेशेंट का रिश्तेदार हो, वो उनको एक धीरज बनता है. मुझे याद है जब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता था काफी साल पहले, तो लोगों की जो एक शिकायत होती थी, मरीज जो डॉक्टर्स उनको केयर करते हैं, उस केयर को तो वो जज नहीं कर पाते, लेकिन उनकी शिकायत इतनी जरूर रहती थी कि डॉक्टर की बात मेरी, डॉक्टर ने मेरी बात सुनी नहीं, नर्स ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया. तो कहने का पर्पस ये है, कहने का भाव ये है कि पीसफुल वे ऑफ लिविंग और कल्चर ऑफ पीस वी नीड टू लर्न. ऑल्दो वी कीप हियरिंग, but now in the fast life, when we are driving, when we are listening on a telephone, how can we stay peaceful? That is what we need to learn. Hame yahan jo samjhaya jata hai, hum yahan jo samajhte hain, jo realize karte hain, wo ye hai ki hum ek atma hai aur atma ka swadharma hi shanti hai. Kuch bhi ho jaye, my true nature is to be peaceful. You might have seen a person might get angry, he might get provoked, he might get violent, but what happens in due course of time, he also becomes peaceful. So peace is our nature. Culture of peace, way of peace, living in peace is what is the need of our. And particularly if we are peaceful, then we can make right decisions. हमारा मन ठीक तरीके से काम करेगा, हमारी बुद्धि भी ठीक तरीके से काम करेगी. तो हमें सबको ये पक्का करना है कि हमारा जीवन जो है वो कल्चर ऑफ पीस है. हमारी संस्कृति, हमारा बातचीत करने का तरीका, हमारा सुनने का तरीका, देखने का तरीका, क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास हो रहा है उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है. जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो एक पुस्तक में मैंने पढ़ा था, जिस पुस्तक का नाम था 7 पर्सनैलिटी ट्रेट्स फॉर इम्यूनिटी, सो बूस्टिंग आवर इम्यूनिटी. वन ऑफ द फैक्टर विच इट सेड वॉज एस फैक्टर, विच वेन ही, इट वॉज ए एक्रोनिम एंड इट स्टूड फॉर अटेंशन, कनेक्शन एंड एक्सप्रेशन. Whatever is happening in our life, we need to think, we need to reflect, we need to go back and see why did it happen. We need to pay attention to it, whether it is headache or whether it is restlessness or whether it is lack of sleep. We need to really look within and find what is going wrong in my life. We need to pay attention. And we need to really understand that we need to become a source of inspiration or empowering others. One of the other qualities we doctors and healthcare professionals, which would really help us in looking after self, is the concept of the culture of sharing and caring. We need to share with others whatever difficulties we come across, whatever obstacles we come across. We share with our seniors, we share with our peers, and then we really make it a motive that we care about each other, care about our own self. We know that we are in such hurry, sometimes we skip our breakfast, sometimes we deprive ourselves of sleep, sometimes we deprive us of, you know, kind of a regular exercise. So we need to pay attention that whatever may be the situation, whatever may be the challenges, we need to really look after our sleep also. Care about our own self, care about having a regular breakfast, care about having good sleep, care about a kind of a relaxation time also, where we can go for a long walk, listen to music. But one of the most easy and most powerful things is just reflect on what you are going through. Go into a meditative mood. Think about it. What is my true nature and why there is a variation? We know that when our basic needs are met, when we are our day-to-day living needs are taken care, nothing else happens. What really is needed is a kind of a stable mind which can bring you happiness. One of the things which I learned during the talks was someone said, that if you want to be happy for a day, go to a barber. If you want to be happy for a month, get married. But if you want to be happy for your whole life, be honest. So we have to be honest in our dealings, honest with our own self. We cannot deceive our own self. So one of the most important thing is to look after your inner world. What is happening within you? If you look after that part, that would really make you strong. Because the challenges are many. Challenges are taken as an opportunity to grow. So once we grow, and another factor which I read in that book was 3 C's. We need to be committed to our work. We need to take the challenges as opportunity to growth. And also, we need to be committed to our work. So once this happens, this would really bring in, boost our immunity. So not only the physical factors like sleep and having regular breakfast and regular exercise, they boost our immunity, but even the psychological traits of helping others, caring about others, what they call helper's high, that also boosts our immunity. So in these difficult times, we need to have a kind of inspiration. We need to have the culture of being a kind of a role model for others. We doctors are considered as God. God with a small g, because God is one. So when we are considered as God, we need to really look after our values, our principles, the compassion, the caring, the cooperation. All these things need to be really imbibed. I know doctors are human beings. The students who learn to be, they have their ambitions. They have their goals and their targets to achieve. But at the same time, we need to see that we don't deplete ourselves of the energy. Our true energy lies in caring about the suffering humanity. We know that the challenge, it's not easy. Some of the patients who are stressed, some of the patients who are anxious, they leave part of stress with us also. So we always need to remember the doctor and patient, they are primarily human beings. Whatever interaction happens, it happens between the two human beings. And here we understand that we are one family. We are one human family. We are the children of same father. So when we are brothers and sisters, when we are brothers and brothers, we need to really look after each other. These things may consider high and ideal, but these are the facts of life. This is the truth of life. This is the essence of life. We need to teach people also how to stay healthy. It's not that drugs and hospitals make people healthy, but a doctor's kind words, a doctor's kind advice about their diet, or a doctor's kind advice about how to handle the relationship issues. Because what we see in today's world is either it is your role or your relationships which cause stress. And we know stress has become all pervasive. We cannot escape stress. वो तो चारों तरफ है. उससे escape करने का इतना ही रास्ता है कि हम अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाएं, हम अपने skills को बढ़ाएं. We need to develop the culture of relearning and learning. We need to reskill ourselves. Whatever skills we have acquired as student, as trainee, we need to practice and we need to relearn those skills. We know our foundation is on service. Our foundation is on compassion. Our foundation is on caring. If we keep this in mind and if we take the message that not only we cure diseases, but now we have to take the responsibility to educate people how to stay healthy, how not to fall sick, how to stay strong, how to look after their families and maintain a balance between work and family. That is what we need to, because people listen to us with attention. And when they listen to us, and if we give them a word of advice, people take it seriously. In common language also say, if someone is doing something not right, they say, tujhe doctor ne kaha tha, ye aise kar raha. Because they feel, if someone has been told by the doctor, you can do without any caution. But we know that we need to observe a sense of, I would say, keen eye to observe. We need to observe our patients so carefully and so clearly, and so that we can advise them what they need. And when they go back happy and satisfied, we receive so many blessings. This is what they call the punya. Punya is not donating money. Punya is not going and helping someone poor, feeding. Punya is someone who has come to you, he goes back contented and happy, and he blesses you. So our life is based on true sense of living and true pursuit of happiness. The happiness lies within us. Happiness lies in helping others. Happiness lies in looking after our own self and making ourselves strong. Only a strong man can be happy, because when there are provocations, when there is stress, when there are difficulties, when we are stable, we value our own self. And when we value our own self, then we stay strong. So it's very important that we develop a culture of peace, we develop a culture of caring, and we develop a culture of looking after our own self and giving a message for people to stay healthy, to stay strong, and stay safe. I'm sure Diwali is coming, and I wish you a very happy Diwali. You enjoy, you have a lot of fun, and I'm sure you'll take care of your personal needs, and you would also take care of your friends and well-wishers who are around you. Thank you very much. Om Shanti.
शांति. पैन इंडिया का प्रोजेक्ट इतना अच्छा चला, इसे इतनी सेवाएं हुई है, जो उद्घाटन के टाइम में ऐसा महसूसता नहीं हुई कि इसे इतनी सेवा हुई है होगी, जितना आज हम पैन इंडिया की सेवाओं को देख रहे हैं. तो सबसे पहले तो हम पैन इंडिया की कमेटी, हमारी सुविधा नील बहन है, हम उनको दिल से बधाई देना चाहता हूँ, थैंक्स देना चाहता हूँ. और उसको कोटि कोटि अभिनंदन करना चाहता हूं, तथा उनके कमिटी मेंबर्स को। हम सबका नाम नहीं लेंगे, किसी का नाम रह जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जितने भी उनके कमिटी मेंबर्स हैं उन सभी को हम दिल से बहुत बधाई दे रहा हूं, बहुत बाबा की तरफ से दुआएं दे रहा हूं कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट, इतना सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा। तो ये तो बाबा की कमाल है, हमारी शुभदा नील तथा उनके कमिटी की कमाल है कि कितना उमंग उत्साह से जुट करके। और हम नहीं समझा था जो इतने लोगों को इस प्रोजेक्ट में जोड़ेंगे। जब नाम सुनता हूं, एक एक का लेक्चर सुनता हूं, चाहे शिविर कराने वाली हमारी टीचर, छोटी छोटी बहनें हैं, बड़ी बहनें हैं, उन लोगों को देखता हूं, तो बड़ी बहनों का, दीदियों का तो हम सुनते आए हैं और उनका ये, लेकिन हम छोटी छोटी बहनों को इस बार सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी छोटी बहनें, कहने में छोटी है लेकिन ये सचमुच कितना बाबा ने इनको आगे बढ़ाया है, हम समझ नहीं पा रहे थे जो आज इस पैन इंडिया के प्रोजेक्ट में उनको प्रैक्टिकल देखा। तो सभी को जो भी सहयोग दिए हैं, चाहे स्पीकर के रूप में सहयोग दिए हैं, चाहे किसी भी प्रोजेक्ट बनाने के सहयोग दिए हैं, चाहे पब्लिसिटी में सहयोग दिए हैं, जो भी सहयोगी आत्माएं इस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं, सबको दादियों की तरफ से, बाप दादा की तरफ से हम कोटि कोटि उनको बधाई दे रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। और ये प्रोजेक्ट समाप्ति नहीं है आज, बल्कि इसका उद्घाटन है। इतना अच्छी सेवा इस प्रोजेक्ट से हुई है तो इसकी समाप्ति हम क्यों कहेंगे? हम तो ये कहें कि नहीं, इसका उद्घाटन हो रहा है। और ये हमारे जितने भी कॉलेज के, मेडिकल कॉलेज के, आयुर्वेदा कॉलेज के, नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट ने लाभ लिया है। एक एक का जब हम फोन, मेरे पास कईयों का फोन आता है, उनकी खुशी को देख करके मेरे को लगता है कि नहीं, ये प्रोजेक्ट तो और पूरे इंडिया में जगह जगह इस प्रोजेक्ट को चलाई जाए, साउथ में चलाई जाए इंग्लिश में, ताकि वहां के बच्चों को भी लाभ मिले। बच्चे उमंग उत्साह में आए, मेडिटेशन करें तो थोड़ी सी स्टडी में उनको बहुत सारी जानकारी मिल जाए, प्रिंट हो जाए। हम तो ये कहेंगे कि मेडिटेशन से उनकी बुद्धि इतनी एकाग्र हो जाए, नहीं तो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है। बहुत बाहर की दुनिया में जितना होशियार होते हैं, तो अपने पढ़ाई लिखाई मेडिकल के सब्जेक्ट कोई छोटी मोटी नहीं होती है, कोई खेल नहीं होता है, बहुत वास्ट होता है। एक एक ऑर्गन्स के बारे में जानना, एक एक नर्व और आर्टरी के बारे में जानना, ब्रेन के बारे में जानना, हर चीज के बारे में जानना और ये करना, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं इंडिया में, सबको इस प्रोजेक्ट के लाभ दिया जाए, चाहे उनकी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करके दिया जाए या कैसे भी करके दिया जाए, लेकिन स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा रहा। साथ ही साथ जो हमारे डॉक्टर्स हैं, चाहे कोई भी वर्ग के डॉक्टर्स हैं, एलोपैथी हैं, आयुर्वेदा हैं, होम्योपैथी है, यूनानी है, सीधा है, कोई भी डॉक्टर्स हैं जिन्होंने सुना है, सबने सराहना किया है, सबने इसकी बहुत बहुत महिमा की है, तो उन डॉक्टर्स के लिए भी हम बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं कि जो अपना सब कुछ छोड़ करके, अपनी प्रैक्टिस, अपनी सब बिजी शेड्यूल से भी टाइम निकाल करके इस प्रोजेक्ट के लेक्चर से और सबसे लाभ लिया है, तो उनका भी हम बहुत दिल से बधाई देता हूं। शुभदा नील बहन को हम क्या कहें, बहन कहूं, मैडम कहूं, क्या कहूं, हम ये उनसे निवेदन करूंगा कि नहीं, इस प्रोजेक्ट को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, किस रूप में बढ़ाया जाए। और हम साउथ के डॉक्टरों के लिए, साउथ के स्टूडेंटों के लिए, मेडिकल स्टूडेंटों के लिए, नर्सिंग स्टूडेंट के लिए, नर्सिंग जो प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, प्रोफेशन में हैं, उन बहनों को, सिस्टर्स को कैसे इस प्रोजेक्ट का लाभ मिले, उसके बारे में भी हम अपने शुभदा नील बहन से इस प्रोजेक्ट में और आगे बढ़ाने के लिए चर्चा करेंगे और कैसे बढ़ाया जाए। और हम अभी इस प्रोजेक्ट को हम विलेज तक ले जाने के लिए सोच रहे हैं कि कैसे, क्योंकि लोगों को लाभ मिल रही है केवल इस प्रोजेक्ट से। डॉक्टर, नर्सेज, मेडिकल स्टूडेंट को ही लाभ नहीं मिला है, आम पब्लिक को भी लाभ बहुत मिला है, एजुकेशन मिली है, क्योंकि वैरायटी लेक्चर था, हर प्रकार के लेक्चर था, जिस लेक्चर से हमारे पब्लिक को भी लाभ मिला है। तो इससे तो मुझे एक और आइडिया आई है कि हम एक एक ऑर्गन्स पर, शुभदान नील बहन से हमने चर्चा किया है और डिटेल चर्चा करेंगे कि एक एक ऑर्गन्स पर, जैसे आजकल महामारी की तरह ब्रेस्ट कैंसर फैल रहा है और प्रोस्टेट कैंसर फैल रहा है पुरुषों में, इस तरह के कैंसर की अलग अलग जो बीमारियां हैं वो क्यों होता है, उससे हम कैसे बचे, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, और बीमारी हो गई तो हमको डरना नहीं है, क्योंकि डर से आदमी आधा कैंसर की बीमारी से तो जो तकलीफ होती है, डर से उससे अधिक डबल तकलीफ हो जाती है, तो वो बीमारी तीन गुना हावी हो जाता है, क्योंकि डर भी हो जाता है, बीमारी भी है। तो इस महामारी से हम बचने के लिए हमारे पास कैंसर स्पेशलिस्ट सर्जन हैं, फिजिशियन हैं, तो उन लोगों को भी इस प्रोजेक्ट में जोड़ने का प्रयास रखेंगे, करेंगे कि मिल करके छोटे छोटे और भी कई बीमारी, हार्ट की बीमारी है, हार्ट के लिए भी हमारे पास डॉक्टर्स हैं जो मेडिटेशन से उन्होंने रिसर्च किया है कि कैसे आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है और एंजियोग्राफी कराने के बाद पता लगता है कि इनका 100% ब्लॉक है, दो दो आर्टरी, तीन तीन आर्टरी 100% ब्लॉक है। तो ऐसे पेशेंट को बुला करके डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन सिखाया है, उनकी आर्टरी क्लीन हो गई है, एक नहीं हजारों, कम से कम 10,000 के लगभग लोगों को आर्टरी क्लीन किया गया है। तो हम इस चीज को क्यों ना इस प्रोजेक्ट के माध्यम से छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना करके यूट्यूब पर या जैसे भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सहयोग से हम जन जन तक पहुंचाएं, ताकि मेडिटेशन से हमारा जीवन में भी, मन में भी शांति हो, जीवन में भी सुधार हो, चरित्र में भी सुधार हो, और हम जो डिप्रेशन की तरह लोग जा रहे हैं उनको भी रोकें। तो ये सारी बीमारियों का जड़ स्ट्रेस है, भय है, चिंता है, हमारी बैड हैबिट्स है, जिसको हम बहुत अच्छा मानते हैं लेकिन वो अच्छा हैबिट्स नहीं है, उन सब के लिए हम मेडिकल विंग की तरफ से छोटे छोटे ये बनाएंगे और बना करके यूट्यूब पर, चैनल पर, सब जगह हम प्रसारित करेंगे, ताकि लोग पढ़ें, देखें, सुनें और अपने जीवन में लाभ लें, उस बीमारी से बचने के लिए वो उनको जागरूकता मिले, वो जागरूक हो कि नहीं इन बीमारियों से, और अच्छी जीवन जीने की हम कला भी सिखाएंगे। हेल्दी लाइफ किसको कहते हैं, हेल्दी लाइफ बनाने के लिए क्या क्या हमको अपने अंदर ध्यान रखना होगा, छोटी छोटी टिप्स, टिप्स के रूप में ये देंगे, ताकि 5 मिनट, 3 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट, इससे अधिक लंबा नहीं, क्योंकि लोगों के पास आजकल भागदौड़ के जीवन में किसी के पास टाइम नहीं है कि 10 मिनट वो बैठ करके कोई टिप्स सुने, कोई ये सुने। तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना करके पूरे शरीर के ऊपर, शरीर के डिजीज, जो भी डिजीज हो रहे हैं, कोरोना वायरस, लोग देखिए है एक वायरस, इससे बड़ी बड़ी भयंकर वायरस आकर के इंडिया में से चला गया, विश्व से चला गया। पहले सुना करते थे कलरा होता था, क्या क्या बीमारी, चेचक होता था, क्या क्या बीमारियां होती थी, आज सब पर हम उस पर ये किए हैं। तो उस बीमारियों से हम बढ़ करके उसे ये एक करके उस पर कैसे काबू पाएं, कैसे मेडिटेशन उसका अच्छा सहयोगी बनेगा, कैसे मेडिटेशन से उस पर हम जीत पाए, ये हमारी प्रोजेक्ट है। उसके पहले हमारी एक कॉन्फ्रेंस है, एनुअल कॉन्फ्रेंस माइंड बॉडी मेडिसिन का, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। और हमारे भारत में कम से कम 22 लाख से भी अधिक डॉक्टर हैं, तो हमारा इस बार का ये ध्येय है, प्रोजेक्ट है, हम सब हमारे कम से कम हमारे 4,500 मेडिकल विंग के मेंबर्स हैं, तो उनसे हमारी आग्रह करेंगे, मीटिंग करेंगे कि 4,500 मिल करके 22 लाख के तक डॉक्टरों तक कैसे पहुंचे, ऐसा प्रोजेक्ट बना करके हम इस तरह से। अब मेडिकल विंग का यही लक्ष्य रहेगा कि जैसे पैन इंडिया से सीखने को मिला है, अनुभव हो गई है, तो इस अनुभव से हम पूरे भारत के जितने भी लोग डिजीज से किसी न किसी परेशानी से वो सफर कर रहे हैं, उनकी परेशानियों को हम दूर करने के लिए हमारा मेडिकल विंग और हमारे डॉक्टर्स और सुविधा नील जैसे हमारे डॉक्टर्स बहने भाई सब मिल करके अच्छी प्रोजेक्ट योग करके निकालेंगे बनाएंगे जो सबको लाभ मिलेगा। तो मैं अंत में यही सबके लिए संदेश कहें कि नहीं, थोड़े दिन में हम बहुत सारी डिजीज पर टिप्स लेकर के आएंगे और इस संदर्भ में हमारे जितने भी पैन इंडिया के मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, जो भी सहयोगी हैं, कोई तन से मन से सहयोग दिया है, समय से सहयोग दिया है, उन सबको हम बाबा की तरफ से, शिव बाबा की तरफ से, दादियों की तरफ से, यज्ञ की तरफ से, बड़े भाइयों की तरफ से हम कोटि कोटि उनको बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, उनको थैंक्स देता हूँ। ओम शांति शांति।
ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज एवं मेडिकल विंग, राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन RERF आपके लिए लेकर आए हैं राजयोग मेडिटेशन कोर्स। आइए इस अंतर मन की यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। राजयोग मेडिटेशन कोर्स का आगामी सत्र सोमवार से गुरुवार, मंडे से थर्सडे शाम 7 बजे से 8 बजे तक मेडिकल विंग के फेसबुक पेज facebook.com/medicalwinghq/live व मेडिकल विंग के यूट्यूब चैनल youtube.com/bkmedicalwing/live। ध्यान रहे इसका ऑनलाइन लाइव प्रसारण होगा। व्हाट्सएप 861-993-7031।